महाधवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 19 ओम नमः सिद्धे प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें पांचवे पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 61 पर। बंध सन्निकर्ष की प्ररूपणा में जगन्य अनुभाग बंध के साथ हम सन्निकर्ष देख रहे हैं और मार्गणाओं में देखते हुए अभी हम स्त्री वेदी जीवों में देखने जा रहे हैं वेद मार्गणा। स्त्री वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग ओघ के समान। स्त्री वेदी ने जो स्त्री वेद का जिनके उदय है उसकी बात। तेजल गुण स्थान मालूम है आपको?
एक से नौ
तक है? तो ओघ के समान यानी वो जो सर्व संकलेश वाले मिथ्या दृष्टि वो भी हो गए जहाँ प्रशस्त प्रकृत नियम। और क्षपक कहाँ तक हो गए? स्त्री वेद के उदय तक हो गए। तो कहते इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव किस में देख रहे? स्त्री वेदियों में। यानी जब स्त्री वेद का उदय का अंतिम समय है तब क्या क्या बन रहा है मालूम? मोहिनी में क्या बन रहा है? गुणस्थान कौन सा है?
नौवा
है। बाकी तो बंध विच्छित हो गई बहुत सारी। अभी क्या बचा? वेद का उदय है ना, वेद तो कुछ तो बंधेगा। हाँ, कौन सा बंधेगा? स्त्री के नपुंसक वेद बंधेगा।
वेद तो गया ना,
स्त्री वेदी जीव है ना। अभी स्त्री वेदी जीव है यानी उसके पुरुष वेदी बंधेगा बाहर। और कुछ बंधेगा? संज्वलन चार बंधेगा, इतने बंधेगा, इतने ही बंधेगा। और मोहिनी का कुछ नहीं बंधेगा, वो हंसरती सब निकल गए, वो तो बंध विच्छित हो गई। ख्याल में ही बात। तो यहाँ स्त्रीवेदी जीवों में विशेषता पहले तो बता दिया, सात कर्म ने मोहिनी का भंग भी वैसा ही है बता चुके। वो तो मित्यत्व अनंतानुबंधी अप्रत्यय उसके लिए लागू होगा। इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव तीन संज्वलन और पुरुष वेद का नियम से बंध करता है। जो नियम से जघन्य होता है किसके लिए जगन्य? स्त्री वेदियों के लिए जगन्य। ओग में क्या कथन था मंजू याद है? ओग में क्या कहते थे? वहां वेद की अपेक्षा मत ले, ओग में कि जहां क्रोध संज्वलन का जघन्य बंध है वहां मान माया लोक का आनंद गुणा होता था। और जहां क्रोध का जघन्य है क्या वहां पुरुष वेद बनता था? क्योंकि वो क्रोध के उदय के अंतिम समय उसका जघन्य था। ये ओग की बात थी। यहाँ स्त्री वेद का उदय है, अंतिम समय है, वहाँ पुरुष वेद भी बन रहा है, क्रोधमान माया लोग भी बन रहे। स्त्री वेदी जीव के लिए यही अंतिम पॉइंट है सबका बंधने का, तो सबका जघन यहीं पर बन रहा है। इसलिए कहते स्त्री वेदी जीवों में क्रोध संज्वलन का जघन बंद करने वाला जीव पुरुष वेद को भी बांध रहा है, अन्य तीन संज्वलन को भी नियम से बांध रहा है जो जघन्य बांध रहा है। इसका अर्थ ख्याल में है न? और जघन्य ही उसमें जघन्य और अजघन्य का ऑप्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
मार्गणा पलट
ना, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। मैं बताती हूँ श्रेणी में क्या होता है, अपूर्वकरण तक तो परिणामों में वेरिएशन होता है, अनिवृत्तिकरण में जब पहुंच गया तो सबके परिणाम एक सदृश, अनुभाग बंध की अपेक्षा भी नव गुण स्थान, नवे गुण स्थान, दसवें गुण स्थान और वहां तक तो यहाँ हम अनुभाग बंध देख रहे हैं, तो वहां एक का जघन्य तो बाकी का जघन्य ही हो। यानी जो नव गुण स्थान शुरू किया है सबके परिणाम एक समान है, उसमें अनुभाग की अपेक्षा वेरिएशन नहीं होगा,
जो भी नव गुण स्थान है सबके।
हाँ सबके, हाँ भले उसमें कोई क्रोध के उदय से ही चल रहा है, कोई स्त्री वेद के उदय से, कोई पुरुष वेद के, कोई नपुंसक वेद के, तीन वेदों का ऑप्शन होगा, चार कषायों का ऑप्शन, फिर भी विशुद्धि या कषायों की मंदता जो कहेंगे, परिणामों की जो अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद में गिनेंगे वो सबके समान होगा। हाँ सबके, एक समय का एक पर्टिकुलर परिणाम सबके लिए, ये विशेषता है। इसलिए क्या कहा, जो क्रोध का जघन्य कर रहा है वो अन्य का नियम से जघन्य करता है, नियम से करता है और वो जघन्य ही करता है। जैसे हम अनंतानुबंधी का जघन्य करता है, कहाँ करता है, तो संयम के सन्मुख वाले को, वहां अन्य का कैसे कैसा करेगा, जघन्य भी अजघन्य भी, उसमें तो वेरिएशन था, वैसे वहां पर नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, हमारी श्रीवेदी की मार्गणा चल रही है, चार गति, चार जाति, छह संस्थान। अभी लिस्ट शुरू के लिए तो शुरू की तो हमें ख्याल में आना चाहिए क्या आने वाला है, ये मध्यम परिणाम में जघन्य बंध होने वाली है। छह सहनन, चार अनुपूर्वी, दो विहाय गति, स्थावर आदि चार और स्थिरादि छह युगल का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंच क्यों लिया, क्योंकि स्त्री वेद उसको सामान्य तिर्यंचों के समान नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, स्त्री वेदी जीव है वो तो नियम से पंचेंद्रिय है, संज्ञा हो या असंज्ञा हो, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय तक तो स्त्री वेद पुरुष वेद होते ही नहीं, तो स्त्रीवेदी है तो उसमें चारों गति के जघन्य के लिए मध्यम परिणाम लिया। ओग में तिर्यंच गति के जघन्य के लिए हमने सातवें नरक वाले को याद किया, सामान्य तिर्यंचों में अग्नि का एक वायु का एक को लिया था, वो दोनों बात यहां नहीं होगी, तो तिर्यंच गति का जघन्य मध्यम परिणाम में होगा। तो वहां हम कह सकते जहां तिर्यंच गति का जघन्य हो रहा है वहां क्या बांध रहा है, कौन सी जाति बांध रहा है, इस तरह से हम सोचेंगे उसको। चार जाति का जघन्य बन सकता है वहां पर, बाकी छह संस्थान वगैरह मध्यम परिणामों से जघन्य बनते वो जघन्य भी बन देंगे और जघन्य भी बन देंगे, इस तरह से देखना। थोड़ा यहाँ जो बताया ना पंचेंद्रिय तीर्यंचों के समान है, वहां हम देखेंगे तो आपको और ख्याल में आएगा, और अपने चतुरिंद्रिय तक की जाति, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का जघन्य सर्व संकलेश मिथ्या दृष्टि वाले उस जीव को होगा, पंचेंद्रिय बिना। केवल वो भवनवासियों के लिए हम देखते थे पंचेंद्रिय जाति का जघन्य बंध मध्यम परिणाम में होता है भवनवासियों के लिए, क्योंकि उनके उत्कृष्ट संकलेश में एकेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट बनता है। यहाँ तो मध्यम परिणाम ही लेना है स्त्री वेदियों में, चार जाति के लिए, पंचेंद्रिय जाति के लिए नहीं लेना अभी तो, उसके बाद अलग से करेंगे। अब हम पंचतिर्यंचों में पंचेंद्रियों में देखेंगे तो आपको और अधिक ख्याल आएगा, अपनी रिवीजन भी हो जाएगी। 42 ये बात शुरू हुई थी तिर्यंचों में 41 से, ये सामान्य तिर्यंचों में थी बात, पंचेंद्रिय तिर्यंच उनमें केवल इतनी डिफरेंस है। देखो 43 पेज पर सेकंड लाइन, इसी प्रकार अर्थात सामान्य तिर्यंच के समान पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की परिगणना परिवर्तमान प्रकृतियों में करनी चाहिए। उसका अर्थ क्या है कि इसका जघन्य मध्यम परिणाम में होगा। सामान्य तिरंज में क्या देखा था हमने, सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वायु का एक में उसका जघन्य अनुभाग होता है, और पंचेंद्र तिरंज त्रिक में मध्यम परिणाम में होता है। डिफरेंस क्या में है, क्योंकि पंचेंद्र तिरंज त्रिक सर्व विशुद्ध अवस्था में तिरंज गति को बांधेंगे ही नहीं। अब हम यहां देखते 42 पेज पर, सामान्य तिरंजों के समान बाकी तो है, तिरंज गति को बता दिया उन्होंने। 42 पेज पर हम बाकी बातें देखेंगे। वहां लिखा था देखो थर्ड लाइन में, चार गति चार जाति छह समय वगैरह वगैरह ओग के समान है। अब ओग में देखेंगे हम। थर्टी वन पेज पर था मेरे ख्याल से, हाँ अपन गतियों की बात नाम कर्मों की 29 से शुरू होती है। देखो वहां से देखते 29 पेज निकाले नीचे का पैराग्राफ। देखो चारों गति का जघन्य मध्यम परिणाम में देखा था हमने, यहाँ नरक गति का भी जघन्य मध्यम परिणाम में होगा, क्योंकि संकलेश में तो उत्कृष्ट बंध होगा नरक गति का, यहाँ मध्यम जघन्य बंध देख रहे हैं। तो वो क्या क्या बांध रहा है, तो पंचेंद्रिय जाति वगैरह वो नियम से बंधने वाली वो शुभ बंधेगी, बाकी वो अस्थिर वगैरह सब अशुभ प्रकृतियां बंधेगी। तो पंचेंद्रिय जाति वैक्रिक शरीर तेजस शरीर कार्मान शरीर वैक्रिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्ट अप्रशस्त वर्ण चतुष्ट अगुरु लघु वगैरह वगैरह नियमों से वो कैसा बनता है, तो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि मन मध्यम परिणाम में बन रही है। और बाकी जो अशुभ प्रकृतियों का बंध कर रहा है उसमें से तो अस्थिरादि छह तो मध्यम परिणाम से जघन्य होती है, और संस्थान भी मुंडक संस्थान भी जघन्य मध्यम परिणाम से होता है, तो वो जघन्य भी बन सकती है। इस तरह से सबको हम लगा सकते
हैं।
नहीं ये नरक गति के लिए लिया, नरक गति के लिए, अभी पंचेंद्रिय जाति के लिए हमने पढ़ा ही नहीं, चार जाति तक ही हमने पढ़ा है। ऐसे तिर्यंच गति के साथ लगाना, तिर्यंच गति का जघन्य बन रहा है तो तिर्यंच गति के जघन्य के साथ मध्यम परिणाम कौन सी जाति बंधेगी अश्विन भाई, जघन्य के साथ ओह में तो हमने वो पंचेंद्रिय जाति बांधता है ऐसा देखा, क्योंकि वहां तो नारकी लिया ओह में, ओह में ओग में हमको नारकी को लेना, परंतु तिर्यंचो में हम और पंचेंद्रिय तिर्यंचो में लेना है तो मध्यम परिणाम वाला लेना। तो मध्यम परिणाम वाला जो, और हमारी तो बात यहाँ स्त्री वेदियों की है,
इन जनरल जो मध्यम परिणाम में तिर्यंच गति का बंद करते उसके साथ पांचों जाति बन सकती
है। हाँ इन जनरल कहेंगे हाँ, तो परंतु करने वाला कोई अलग अलग होगा।
हाँ,
हाँ जैसे पंचेंद्रिय जाति का मध्यम कर रहा है सॉरी जघन्य कर रहा है उसको भी सोचना पड़ेगा। जैसे नारकियों में पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कब होगा, तो सर्व संकलेश में, और वो तो पंचेंद्रिय जाति का ही बंद करते हैं। देवों की बात सोचना है, नीचे के देव एकेंद्रीय जाति भी बांधते पंचेंद्रिय जाति भी, तो सर्व संकलेश में एकेंद्रीय का उत्कृष्ट बांधेंगे, तो एकेंद्रीय जाति भी पंचेंद्रीय जाति भी मध्यम परिणाम से जघन्य बंधेगी। किसके लिए, भवनवासी तक के लिए, सदरमेशान तक के लिए। मनुष्य तिरंचों में बात करेंगे, मनुष्य जो है पंचेंद्रीय जाति का जघन्य कब करेंगे, तो सर्व संकलेश में जब नर गति का उत्कृष्ट बांध रहे। ख्याल में कैसे सोचना है, इसलिए वहां चार जाति को लिया। अब यहां स्त्री वेदी को लिया, स्त्री वेदी को भी चार जाति को मध्यम परिणाम में लिया, पंचेंद्रीय जाति को अलग रखेंगे। कौन स्त्रीवेदी? वो देवी तो बनेगी, पंचेंद्रीय जाति भी बन सकती है।
स्त्रीवेदी के लिए दो ऑप्शन एक है या पंचेंद्रीय।
पहले में पहले देखो देखो यहाँ कौन सी गति बनती है, ऐसे नहीं वो तो पंचेंद्रीय तिरियंचों के समान है कहकर वो छोड़ दिया। 42 पेज निकालो देखो फिर से। हाँ परंतु वहाँ कौन सी मार्गना थी? ना तिरियंचों की मार्गना थी, सामान्य तिरियंचों की थी। किसके लिए ओके समान बताया? सामान्य तिरियंचों के लिए। तो उनमें क्या घटित होगा तिरियंच गति के लिए? कि जहाँ तिरियंच गति का जघन्य कर रहा है वहाँ पंचेंद्रीय जाति ही बंधेगी। अग्नि का एक वायु का एक सुनो अरविंद भाई क्या कहते हैं फिर मैं उनको पहले समझूंगी। चार गति की बात, यानी जो तिरियंच गति का जघन्य कर रहा है, मनुष्य गति का जघन्य कर रहा है, देव गति का जघन्य, नर गति का कर रहा है, वो कथन ओग के समान होगा। हाँ यही यहाँ पर सामान्य तिरियंचों में होगा, क्योंकि सामान्य तिरियंचों में अग्नि का एक को सर्व विशुद्ध में तिरियंच गति ही बन रही है और पंचेंद्रीय जाति ही बन रही है, इसलिए ओग के समान वहां घटित हुआ सामान्य तिरियंचों में। पंचेंद्रीय तिरियंचों में वो घटित नहीं होगा। अभी अभी सुन, एक ख्याल में अभी आप बोलो।
नहीं आपने क्या उत्तर दिया?
मैंने ये कहा, उनका ये कहना था चार गति के लिए उन्होंने ओग के समान कहा, और यहाँ तिरियंचों में भी वो ओग के समान कह रहे हैं। हाँ मैंने कहा कि ओग में जो अभी ओग में निकालो आप, तो मैं क्या कहना चाहूंगा, ओग में तिरियंच गति का जघन्य बंद करने वाला पंचेंद्रीय जाति ही बांधता है ऐसा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि तिरियंच गति का जघन्य करने वाला सातवें नरक का नार के सम्युक्त के सन्मुख अवस्था वाला था, वहां उसका जघन्य हो रहा है और नार के सारे पंचेंद्रीय जाति ही बांध रहे, वो बांध रहा। अब यही कथन सामान्य तिरियंचों में भी घटित होता है ऐसा कहा, क्योंकि ओग के समान कह दिया यहाँ पर। वहां कैसा अर्थ लगाना? वहां पर भी ऐसा लगाना कि जो तिरियंच गति का जघन्य कर रहा है वो पंचेंद्रीय जाति का ही बंद कर रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि का एक और वायु का एक सर्व विशुद्ध अवस्था में तिरियंच गति उनकी बनती है तो वही बंधेगी, परंतु विशुद्धि ज्यादा है इसलिए वो पंचेंद्रीय जाति का ही बंद करेंगे। और वो कितना होगा उनकी अपेक्षा? वो तो अनंत गुणा अधिक होगा। ये ओग का कथन सामान्य ओग में था तो नारकी की अपेक्षा कहा था, सामान्य तिरियंचों में अग्नि वायु की अपेक्षा से, परंतु कथन तो दोनों में सेम है। बराबर है ना उसकी कहीं ना है, उसकी अभी बात ही नहीं आई है। हम जाति के साथ अभी नहीं लगा रहे, हम गति के साथ जाति लगा रहे। ख्याल में बार परंतु मनुष्य तिरियंच जब बंद करेंगे किसका?
पंचेंद्रिय
नहीं
गति का
नहीं, मनुष्य तिरियंचों के लिए पंचेंद्रिय जाति का जघन्य बंध सर्व संकलेश में होगा। क्या नहीं है बात? आप अभी सोच रहे हैं क्या काम है? जघन्य बंध
जघन्य
हाँ
मनुष्य
तिरियंचों के लिए सर्व संकलेश में होगा। अभी स्त्रीवेदी में लेना है तो वो तो स्त्रीवेदी तो भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाली भी है, और उनके पंचेंद्रिय जाति का मध्यम परिणाम में जघन्य बंद हो सकता है ना। यानी स्त्रीवेदी में हो सकता है मध्यम परिणाम से। नरक गति के साथ एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट तो उनके भी नहीं होता, देवों के होता है। ख्याल में आएगा, क्योंकि सर्व संकलेश में नरक गति बंधेगी, तीन इंच गति भी नहीं बंधेगी, इसलिए वहां पंच इंद्रिय जाति बनती है। इसीलिए मैंने केवल चार गति लिए, आप अभी जाति में आगे चले गए है ना।
मैं क्या बोल सकता हूँ कि तिलियन गति का जगन करता है श्रीवेदी को, तिलियन गति का जगन कर रहा है
तो मध्यम परिणाम में कर रहा है।
हाँ, तो उसके साथ जाति पांचों बनती है, कोई मेरा
फिर से तिलियन गति का जघन्य करने वाला,
हाँ, तिलियन गति का जगन कर रहा है तभी उसको पांचों जाति बनती है।
पांचों जाति बंधेगी, परंतु वो तीन पंचेंद्रिय जाति कैसी बंधेगी? हाँ, ऐसा तो हाँ। नहीं बंधने का सवाल नहीं, परंतु वो जगन नहीं बनती ऐसा
मत। नहीं,
यानी उसमें भी ऐसा लिखना पड़ेगा, वो जगन भी बन सकती है और वो अनंत गुना अधिक भी बन सकती है, क्योंकि देवी के लिए वो तो जगन्य भी बन सकती है और मनुष्य ने तीरें चने के लिए वो अनंत गुना अधिक बन सकती है। ये तो चार गति की बात ख्याल में आई थोड़ी थोड़ी। देखो यहाँ क्या लिखा उन्होंने, पंचेंद्रिय तीरियन चौंके समान है, तो पंचेंद्रिय तीरियंचों में चारों गति का जगन कहाँ हो रहा था? मध्यम परिणाम। इतनी तो बात ख्याल में आई। अब चार जाति का भी जघन्य परिणाम मध्यम परिणाम से जघन्य होता है, ये सभी पूरी लिस्ट, छह संस्थान, छह सौनम, चार अनुपूर्वी, दो व्यागति, स्थावर आदि चार को लिया और स्थिर आदि छह युगल का भंग पंचेंद्रिय तीर्यंचों के समान। अब इसमें से कुछ प्रकृतियां छोड़ी, उसकी चर्चा अब करेंगे। देखो पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का भंग करने वाला जीव नरक गति, कुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष, नरक गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणादि को। ये स्त्रीवेदी तीनों में कंपैरिजन की, वहां वो देवी को भी अलग नहीं रखा है, भले देवी मनुष्य तीन जो कोई करता है उसको जगन्य कहेंगे। तो इतने संकलेश परिणाम है कि नर गति का तीव्र अनुभाग बांध रहा है।
संकलेश परिणाम में तो जगन उत्कृष्ट बंद होगा
नर गति का,
हाँ।
और पंचेंद्रीय जाति तो शुभ प्रकृति है,
तो उसके जगन का नर गति का बंद होगा।
देखो पंचेंद्रीय जाति का जगन अनुभाग का बंद कब होगा? सर्व संकलेश में होगा। अति संकलेश में कौन सी गति बंधेगी?
अति
संकलेश नर गति, तो नर गति का हो रहा है। नरक गति के साथ और क्या क्या बंधेगा? कुंडक संस्थान बंधेगा।
तो पंचेंद्रिय जाति अति संकलेश में नहीं बनती
है ना? नरक गति के साथ तो बंधेगी ना, जघन्य बन रही है,
हाँ,
जघन्य बन हाँ, रही हाँ। नहीं बनती ऐसा नियम नहीं है। अब ऊपर के देव ले लो, सनत कुमार से लेकर ऊपर सहस्रार तक के अति संकलेश है, वो तो एकमात्र पंचेंद्रिय जाति का ही तो बंद करते
हैं। सर्व विशुद्धि में उत्कृष्ट बंद होगा ना पंचेंद्रिय,
सर्व विशुद्धि में कहाँ होगा वो? सर्व विशुद्धि में बंद उत्कृष्ट,
बंद विच्छुति का,
हाँ बंद विच्छुति कहाँ होती है याद है?
आठवें
जो याद नहीं वो आठवें में डाल दो। बहुत अच्छा। देखो अभी नरक गति के साथ और क्या क्या बंधेगा? तो मुंडक संस्थान नियम से बंधेगी, अप्रशस्त वर्ण चतुष, नरक गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छो के छो नियम से बनते। बन कैसे बनते? तो अनंत गुना अधिक बनते, क्योंकि ये सारे मैक्सिमम यहाँ बन रहे हैं, उसका अनुभाग मैक्सिमम है यहाँ पर। मिनिमम कब होगा? अब नरक गति का मिनिमम मध्यम परिणाम में होगा, परंतु बाकी जो यथा योग्य उनके मध्यम परिणाम में ही उनका मिनिमम है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, अनंत गुणाधिक। हाँ क्वेश्चन बोलो। स्त्री वेदी जीव तीर्य जगति का जघन्य बंद कर रहा है।
सभी चार जाति तो जघन्य को गति से अजघन्य गति का कथन कैसे,
अनंत गुणाधिक बन रहे।
अनंत गुणाधिक से जाएगा तो जघन्य क्यों होगा,
अनंत गुणाधिक क्यों ऐसा कह रहे हो। स्त्री वेदियों में पंचेंद्रीय जाति का जघन्य कौन बंद कर रहा है, अभी हम जो जिसको पढ़ रहे हैं सर्वसंकल जो नरक गति बांध रहा है, उस अपेक्षा से यहाँ पर कैसी बंधेगी पंचेंद्रीय जाति, अनंत गुणाधिक बंधेगी। हेलमिंग वो देवियों के लिए बोले वो जघन्य कहलाएगी, देवियों के लिए वो जघन्य हो सकता है, देवियों के लिए जघन्य हो सकता है, योग में वो जघन्य नहीं कहलाएगा, स्त्री वेदियों में वो जघन्य नहीं होगा। स्त्री वेदियों में जघन्य नरक गति के साथ ही होगा, अभी हम स्त्री वेदी की मार्गना पड़ रहे।
स्त्री वेदी तीर्य गति का जघन्य कर रहा है, तभी पंचेंद्रिय जाति का कथन कैसे होगा,
वही मैं बोल रही हूँ।
अनंत गुणा होगा।
देखो स्त्री वेदी जब तीर्य गति का जघन्य बंद कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, मध्यम परिणाम कर रहे हैं, और पंचेंद्रिय जाति का जघन्य बंद कहाँ होता है, सर्व संकलेश में होता है, उसका अर्थ क्या है।
अच्छा जघन्य की अपेक्षा है,
उसके अपने जघन्य की अपेक्षा है तो लगा नहीं। हाँ देखो देखो, पंचेंद्रिय जाति का जघन्य करने वाला वो नरक गति के साथ बनने वाली जो अप्रशस्त प्रकृति है वो नियम से अनंत गुणा बनती है, नक्की हुआ। अब उसके साथ और क्या क्या बन रहे, तो वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, ये सारे प्रशस्त प्रकृतियां ले रहे हैं यहाँ पर। प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघु त्रिक चतुष्क, रस चतुष्क निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य का अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ये भी सारी पंचेंद्रिय जाति के समान प्रशस्त प्रकृतियां और इनका भी जघन्य सर्व संकलेश में होगा, इसलिए जघन्य भी बन सकती है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार अभी जैसे पंचेंद्रिय जाति के साथ सन्निकर्ष लगाया, ऐसा ही सन्निकर्ष वैक्रियक अंगोपांग, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग और त्रस की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी उसको एक एक को रखो और उसका जघन्य बंद करने वाला वो नरक गति वगैरह बांध रहा है, वैक्रियक शरीर, तेजस कारमान वगैरह बांध रहा है, इस तरह से ले लेना। अब स्त्री वेदी जीव औदारिक शरीर, आतप और उद्योत का भंग सौधर्म कल्प के समान है, यानी औदारिक शरीर का जघन्य अनुभाग बंद कर रहा है। स्त्री वेदियों में औदारिक शरीर का जघन्य अनुभाग, यानी देखो हमने क्या देखा, मनुष्य और तीर्यंच सर्व संकलेश में नरक गति और वैक्रिक शरीर बांधे, तो औदारिक शरीर का जघन्य कौन बांधेंगे, तो नहीं देवी बांधे, मनुष्य तो सर्व संकलेश में उसको सर्व जघन्य चाहिए, तो सर्व संकलेश में औदारिक शरीर बांधने वाला कौन है, तो देवी है हमारे पास, अभी स्त्री वेदी है ना इसलिए देवी को याद किया। एक इंद्रिय का उत्कृष्ट बंधेगा तभी, तो सौधर्म कल्प के समान है। हम सौधर्म कल्प में देखेंगे, उसके पहले हम सोचेंगे औदारिक शरीर का जघन्य बंद कर रहा है, और अभी उन्होंने तो क्लू दे दिया सौधर्म कल्प से, मैंने देवी स्त्रीवेदी देवी कर रहे हैं, तो औदारिक शरीर का जघन्य बंद हो रहा है, यानी देवियों में वो सर्व संकलेश वाले हैं, बराबर। तो वहां गति कौन सी बन रही है, संकलेश में कौन सी बंधेगी? एक इंद्रिय जाति गति तीर्यंचक, तो तीर्यंच गति बांधेंगे, एक इंद्रिय जाति बांधेंगे, कैसी बांधेंगे? जघन्य बांधेंगे के अजघन्य? अजघन्य अनंत गुणाधिक बांधेंगे। एक इंद्रिय जाति मध्यम परिणाम में जघन्य होती है और यहाँ सर्व संकलेश वाला है, ख्याल में ही ना? इस तरह से सोचना हमें उसके बारे में। तीर्यंच गति भी मध्यम परिणाम में जघन्य है और औदारिक शरीर के जघन्य के टाइम वो तो सर्व संकलेश वाला है। अभी हम सौधर्म ईशान की बात निकालो, वहां हम आपको बताएंगे। 53 अरविंद भाई के पास पेज नंबर तैयार होते हैं। 53 53 पेज में, क्योंकि हमें औदारिक शरीर को देखा है ना, देखना है। 117 नंबर का पॉइंट नीचे से दूसरा पेरेग्राफ पेज नंबर 54। देखो अन्य प्रकृतियों के लिए वो भुवनवासी की याद नहीं की उन्होंने, क्योंकि वहां तो उसकी बात अलग, कहीं तीर्यंचों में घटित होता था, कहीं देवियों में घटित होता, वो तो बात अलग। औदारिक शरीर के जघन्य अनुभव का बंद करने वाला जीव मिला, तीर्यंच गति एक केंद्रीय जाति। अब वो एक केंद्रीय जाति के क्या साथ बांधेगा? तो हुंडक संस्थान और प्रशस्त वर्ण चतुष्क वगैरह वगैरह, उपघास स्थावर अस्थिर आदि पांच ईश्वर को छोड़ा। नियम से बंद करता है कितना बताया? वो अनंत गुण अधिक होता है, क्योंकि ये सारे अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। औदारिक शरीर का जघन्य सर्व संकलेश में होगा और वहां अप्रशस्त का अनुभव मैक्सिमम होगा, बराबर। योगे ना, तो अनंत गुणा होता है। अब औदारिक शरीर के साथ बनने वाली तेजस कारमाण प्रशस्त वर्ण अग्र लघुत्रिक बादर पर्याप्त प्रत्येक निर्माण का वो भी नियम से बंद करता है, तो वो जघन्य भी करेगा अजघन्य भी करेगा। आतप उद्योग का भी कदाचित बंद करेगा करेगा तो वो भी जघन्य अजघन्य हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा पेज 54 पर। हाँ वही पे इसी प्रकार आतप और उद्योग का भी ऐसा ही परस्पर सन्निकर्ष जाना चाहिए, यानी वो भी आतप या उद्योग का जघन्य करने वाला जीव एक इंद्रिय जाति तीर्यंच गति उसका बंद कर रहा है जो अनंत गुणा अधिक हो सकता है। ये हमारे 61 पेज पर हमने अभी 54 का रेफरेंस देखा। औदारिक अंगोपांग के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, तीर्यंच गति, औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर कुंड संस्थान असंप्राप्त रूपाटिका सहन प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तीर्यंच गत्यानुपूर्वी अगुरु लघु उपघात त्रस बादर और प्रत्येक अस्थिर आदि पांच और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। द्विंद्रिय लेंगे या पंचेंद्रिय लेंगे? उनका प्रश्न था क्या द्विंद्रिय जाति ले सकते हैं? ये कौन सी वाली ली है? ये नियम वाली ली
है,
परंतु देवी सर्व संकलेश में पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे और मनुष्य तीर्यं चौदारी का गोपांग का जगन्य करते समय द्विंद्रिय जाति का बंद करेंगे, देवी तो इसका बंद करते ही नहीं है। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय का बंद देवों के होता ही नहीं, या तो एक केंद्रिय का बंद करेंगे या पंचेंद्रिय।
हाँ,
अनंत गुणा अधिक होगा। क्या क्या
मनुष्य
क्या लिखा है तो बिंदु का जघन्य कब होगा? अपर्याप्त के साथ होगा। अपर्याप्त के साथ होगा ना उसको। देखो देखो आप आगे की बात पूछते हैं लोगों को, पहला भी ये वाक्य भी पढ़ा नहीं, अगर हम इसको पहले पढ़ेंगे फिर बाद में आपकी चर्चा करेंगे। देखो द्विइंद्रिय जाति ये हम पढ़ेंगे भी, ऊपर का तो ख्याल में आया ना, ऊपर हमने क्या देखा था फिर से औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग का बंद कर रहा है, तिरंज गति बांध रहा है वो, ये सारे नियम से वाली बात, वो देवी हो या तिरंजनी मनुष्यनी हो, औदारिक अंगोपांग के जगह ने बांधने वाला तो तिरंज गति का ही बंद कर रहा है, क्योंकि औदारिक अंगोपांग प्रशस्त है, उसका जघन्य संक्लेश में, परंतु अंगोपांग बांध रहा है तो एक इंद्रिय का तो बंद नहीं करेगा, द्विंद्रिय का तो, क्योंकि द्विंद्रियादि में द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रियों में अधिक संक्लेश में कौन सी जाति बंधेगी? तो द्विंद्रिय जाति बंधेगी। वो नरगति के साथ पंचेन्द्रिय बनती है उसकी याद नहीं करना, क्योंकि वहां तो वैक्रिक शरीर बन रहा है, यहाँ उदारिक अंगोपांग बन रहा है, तो उसमें से द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रिय बंधेगी जगन के साथ तो द्विंद्रिय बंधेगी, मनुष्य दिव्यांचन के लिए द्विंद्रिय बंधेगी, देवी है तो पंचेन्द्रिय बंधेगी, तो उसलिए ऊपर उन्होंने जाति की कोई बात ही नहीं ली, पहली लिस्ट में नियम से बंधने वाले में किसी जाति को नहीं लिया था, क्योंकि वो कदाचित में रखेंगे, परंतु नियम से बंधने वाली वो तेजस कर्मण वगैरह तो ले ही लिया, संस्थान सहनन वगैरह वगैरह, परंतु लास्ट में देखो अगुर लघु उपघात के बाद त्रस लिया, क्योंकि द्विंद्रिय आदि सारे त्रस है, बादर लिए क्योंकि उनमें तो सूक्ष्म होता ही नहीं है, और प्रत्येक लिया क्योंकि सारे प्रत्येक ही है, साधारण उनमें होते ही नहीं, परंतु पर्याप्त या अपर्याप्त की बात वहां नहीं ली, बराबर क्यों नहीं ली? वो ऑप्शनल में रखेंगे, देवी तो अपर्याप्त का बंद करते हैं ना, द्विंद्रिय का करते हैं, वो पंचेन्द्रिय पर्याप्त का ही करेंगे, परंतु मनुष्य और तिर्यंच औदारिक अंगोपांग का जगन्य करने वाले द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ जगन्य करेंगे, ख्याल में भी बात। अब ये तो ऊपर की हो गई, वो अनंत गुणा अधिक क्यों, वो भी हमारे ख्याल में आया, क्योंकि इसमें से कुछ प्रशस्त प्रकृतियां हैं जो एकेंद्री के उत्कृष्ट के साथ सर्व संकलेश में वो जगन्य बनती थी, अंगोपांग का बंद होने योग्य परिणाम है द्विंद्रिय का, तो वो अनंत गुणा अधिक बन गई, बरोबर यहां तक बात ख्याल में। अब जाति की बात, वो कदाचित वाली प्रकृतियां यहां देखेंगे, द्विंद्रिय जाति या पंचेन्द्रीय जाति दोनों का ही ऑप्शन लिया, किसके साथ? औदारिक अंगोपांग के जगन्य के साथ बात हो रही है, दोनों ही बन सकती है, परघात उच्छ्वास पर्याप्त बंधेगी तो परघात उच्छ्वास भी बंधेगी, उद्योत ये तो ऑप्शनल होती है वो भी पर्याप्त के साथ बंधेगी, अप्रशस्त विहाय गति पर्याप्तों के साथ ही बंधेगी, पर्याप्त अपर्याप्त लिए, और दूसवर वो भी पर्याप्तों के साथ बंधेगा, पर्याप्त के साथ वो स्वर या विहाय गति परघात उच्छ्वास बनती नहीं है, कदाचित बंद होता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। अब ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा, अब आपका प्रश्न पूछना अश्विन भाई, क्या द्विंद्रिय
अंगोपांग
अभी आप
ऊपर की प्रकृति का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, अभी प्रॉब्लम कहाँ है?
अरे कुंडली कर्मकांड का जगह कर रहा है वहाँ पे।
निकालो वो भी निकालो, आपका प्रश्न मुझे ख्याल नहीं। देख रही थी अपर्याप्त को मैं देखे, अच्छा पीरियंज अपर्याप्त को मैं देखे। आप कहाँ बता रहे हैं अश्विन भाई? ये अरविंद भाई
34
औदारिक अंगोपांग का जघन्य, वहां तो ओग में तो मिथ्या दृष्टि देवनार की गया था, वहां तो पंचेंद्रिय जाति का नियम से बंद है, यानी ऊपर के देव और नार के उनके वो जगन्य होगा, वहां देवी नहीं है। देवी और मनुष्य की रेंज
देवी तो हमेशा पर्याप्त का बंद,
इसीलिए वो ऑप्शनल में रखा। हाँ बराबर है, इसीलिए द्विंद्रिय जाति के। अब ये जो द्विंद्रिय जाति बांधने वाले मनुष्य और तिरेंच लिए, अब मनुष्य तिरेंच में औदारिक अंगोपांग का जगह में देखो, यानी वो क्लैरिटी करने के लिए मैं सबको आपको देखो, तिरेंचों में जो हमने देखा था 41 से तिरेंच शुरू हुए मॉर्गना और उनमें औदारिक शरीर अंगोपांग 42 नंबर पेज पर, औदारिक अंगोपांग का जगन मिला 42 नंबर पेज है, 86 नंबर का पॉइंट है, चौथी लाइन है। औदारिक अंगोपांग का जगन अनुभाग बंद करने वाला जीव क्या क्या बांध रहा है? तिरेंज गति, द्विंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेज शरीर, कर्म शरीर, मुंड संस्थान, असंप्रासित पाटिका सहनन, प्रशस्त वर्ण, चतुष्कंभिकान, तिरेंज गत्यानुपूर्वी, अगुरु रघु उपघात, त्रस बादर, क्या लिया? अपर्याप्त लिया। और ये नियम से बंधने वाली है, यानी मुझे यही अपर्याप्त ही बताना था कि मनुष्य तिरेंच जो औदारिक अंगोपांग का जगन्य बंध करते हैं तो द्विंद्रिय जाति अपर्याप्त के साथ बंध रहे, और वो कैसी बंध रही है? अनंत गुणा अधिक बंध रही। यहाँ पर द्विंद्रिय जाति का बंध अनंत गुणा अधिक बंध रहा, तो द्विंद्रिय जाति का जगन्य कौन करेगा? ये उसके साथ ये प्रश्न यही है ना आपको? हाँ मुझे मालूम है ना, अब निकालो। चार जाति का जगन ने कहाँ देखा था याद है? देखो ये सादी बात है, सीधी बात है, औदारिक अंगोपांग प्रशस्त प्रकृति है, उसका जगन्य बन रहा है। अभी अभी सुनो, लोगों को समझने दो, तो सर्व संकलेश में जगन्य बन रहा है, तो सर्व संकलेश में वो द्विंद्रिय जाति बन रहा है, चार जाति में से उसको द्विंद्रिय जाति, हाँ मनुष्य तिरेंच, तो उसको संकलेश है, तो द्विंद्रिय जाति प्रकृति कैसी है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त, तो उसका ज्यादा बंधेगा कि कम बंधेगा? अनुभव ज्यादा बंधेगा। हमने देखा था चारों जातियों का जघन्य बंध मध्यम परिणाम में, तो यहाँ द्विंद्रिय जाति कैसी बंधेगी? अनंत गुणाधिक, अपर्याप्त नाम कर्म कैसे बंधेगा? अनंत गुणाधिक बंधेगा। इसीलिए यहाँ जो लीज दी है ना, अभी देखो औदारिक अंगोपांग के जघन्य के साथ बात चल रही है,
मध्यम परिणाम में
जघन्य होगा, तो औदारिक अंगोपांग के जघन्य के साथ वो तो संकलेश वाला है, तो वहां वो अनंत गुणाधिक बंधेगा। हमें ऐसा लगता है ना, अगर अंगों का अंग बन रहा है तो द्विंद्रिय के साथ बन रहा है तो वो भी जगन्य क्यों नहीं है, उसको अनंत गुणा क्यों कहा, यही इसका सवाल यही है। अब देखो, औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग बंद करने वालों में, अभी स्त्री वेदी में लेना है तो जो देवी है वो पंचेंद्रीय जाति के साथ पर्याप्त, वो तो पर्याप्त ही बांध करते ना। और जो मनुष्य नी तिरियंचनी है द्विंद्रिय पर्याप्त। अब देवी में भी देखो, पंचेंद्रीय जाति का भी अनंत गुण अधिक बताया, क्योंकि देवियों के लिए पंचेंद्रीय जाति का जघन्य बंध मध्यम परिणाम में होता है, उनके लिए। मनुष्य तिरियंश में पंचेंद्रीय जाति का जघन्य बंध तो नरक गति के साथ तीव्र संक्लेश में हो रहा था, उनकी बात नहीं है। हमने तो अभी दौड़ में डिवाइड किया ना, अंगोपांग का जघन्य बंध देवी को भी हो सकता है, मनुष्यों को भी हो सकता है। देवी बंद करेंगे तो पंचेंद्रीय जाति के साथ बन रहे वो पर्याप्त वगैरह सब प्रकृतियां बन रही है, यानी पंचेंद्रीय जाति, परंतु वो तो तिरियंज को ले लेना, वहां मनुष्य को नहीं लेना, तिरियंज गति बांध रहा है, पंचेंद्रीय जाति तिरियंज गति के साथ बन रहा है, मनुष्य तिरियंज बांध रहा है, मनुष्य नहीं तिरियंज नहीं, द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ बन रहा है, अपर्याप्त द्विंद्रिय अपर्याप्त। तो ये द्विंद्रिय और अपर्याप्त दोनों ही अशुभ प्रकृतियां, तो यहाँ वो मैक्सिमम बन देगी, इसलिए अनंत गुणा अधिक होता है। अन्य औदारिक अंगों का तो प्रशस्त प्रकृति है, और जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव संकलेश वाला है। आगे बढ़े, तेजस और कारमान शरीर का भंग ओघ के समान है, यानी तेजस शरीर और कारमान शरीर का जघन्य बंध करने वाला है, ये तो प्रशस्त प्रकृति है, जघन्य बंध सर्व संकलेश में होगा, इतनी विशेषता है कि औदारिक अंगोपांग और असंप्राप्त सुपाटी का सहनन को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। क्यों? हम कहेंगे नरक गति के साथ बन रहा है, एक इंद्रिय के साथ। ख्याल में आएगा, देवी है, देखो देखो तेजस कारमान तो ध्रुवबंदी है, चारों गति वाले हर समय बांध रहे। अब देवी सर्व, अभी हमारे पास मार्गणा कौन सी, स्त्री वेदी थी, तो देवी सबसे मैक्सिमम संकलेश कर रही है, तो क्या बांधेगी, एक इंद्रिय जाति बांधेगी, तिरियंच गति बांधेगी, तो एक इंद्रिय के साथ औदारिक शरीर तो बंधेगा, अंगोपांग नहीं बंधेगा, और एक इंद्रिय के साथ सहनन नहीं बनता। अब मनुष्य तिरियंचों की बात करें, तेजस कारमान का सर्व जघन्य है, यानी अति तीव्र संकलेश है, तो क्या बांध रहे, नरक गति और पंचेंद्रिय जाति, नरक गति के साथ ना औदारिक अंगोपांग होंगे तो वैक्रिय अंगोपांग बन देगा, और सहनन तो बनता नहीं है, दोनों ओर से ख्याल में है ना, ये दोनों को क्यों छोड़ा।
असंप्राप्त सहनन आएंगे ना, सहनन का बंद नहीं करते,
हाँ
असंप्राप्त ही लिया उसने,
क्योंकि वो सर्व संकलेश में ये बनता है, इसलिए आप कहेंगे सभी सहननों को छोड़ना था ना, हाँ ऐसा ही आपका कहना ना, यानी कोई भी सहनन बंधेगा ही नहीं ना,
इसलिए
यानी दोनों ही के लिए सहनन का बंधन नहीं है। उनका यही कहना था तेजस और कारमन के साथ अन्य सहनन बंधे, परंतु जघन्य के साथ है ना, सर्व संकलेश में बंधेगा तो कौन सा सहनन बंधेगा, वो संकल्प, परंतु उसको नहीं लेना। इसका कारण आपको लिखना है, तो देवी में एक इंद्रिय का बंध है, एक इंद्रिय जाति का बंध है, हेलो आवाज है क्यों गई? हेलो हेलो हेलो। देवी में एक इंद्रिय जाति का बंध है, इसलिए ये प्रकृति नहीं बनती। और मनुष्य तिर्यंचनी में नरक गति का बंध है। हाँ, औदारिक अंगोपांग और सहन है, और संप्राप्त सुपाटी का सहन, एक इंद्रिय के साथ तो सहन ही नहीं होता है। यानी वो सर्व संकलेश में जघन्य बांध रहे ना, तेजस कारमन का जघन्य बंध सर्व संकलेश वाले के होता है। देवी में एक इंद्रिय जाति का बंध होगा तो ये प्रकृतियां नहीं बनती है। कौन सी? औदारिक अंगोपांग और असंभ्राव सुपाटी। मनुष्य तिरेंच में नरक गति के साथ नरक गति बंधी है, वहां पर भी ये प्रकृति नहीं बनती, इसलिए इनको छोड़कर सन्निकर्ष यानी तेजस कारमण के जगन्य बंध के साथ इनका बंध नहीं होगा। बस ये बात। पर यदि मैं कहूं यहां स्त्री वैदिक की बात नहीं होती तो हम इन जनरल कथन करते कि तेजस कारमान के जघन्य के साथ क्या औदारिक अंगोपांग और असंप्राप्त सुपाटी का सहन बन सकते हैं? मंजू, कोई चार गति में से कोई जीव बांध सकता है? कौन सा बांधेगा बोलो? क्या कहा मैंने? सर्व संकलेश है,
मनुष्य
धीरे नर गति बांध रहे हैं,
मनुष्य गति
नहीं, सर्व संकलेश में मनुष्य गति नहीं बनती। नारकी क्या करेगा? तीरियंच गति के साथ इसको बांधेगा ना, पंचरी जाती तो बांध रहा है। स्त्री वेदी है इसलिए ये बात निकली, और स्त्री वेदी भी वो नीचे के देह होते इसलिए ये बात निकली। ऊपर के देह होते तो ये कंडीशन नहीं लगाते, पंचरी जाति का ही बंद करेंगे। ख्याल में आई बात? स्त्री वेदी की कंडीशन थी इसलिए ये यहाँ ऑप्शन नहीं, इसकी बात ही करूं मैं दे सका। अगर ये ऑप्शन नहीं देते तो हाँ, तो पुस्तक वेदी में हम जरूर डालेंगे उसको, वहां ऐसा नहीं कहेंगे। अब आगे, यही तेजस कारमान का जगन्य करने वाले जीव पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, आतप, उद्योत और त्रस का कदाचित बंद करता है। देख कदाचित वाले लिए, क्योंकि देवी हो तो एक इंद्रिय के साथ बंद कर रहे हैं, मनुष्य धीरेन्द्र तो नारकी की नर गति के साथ बन रहे, इसलिए सब कदाचित वाले लिए। आप कहेंगे पंचेन्द्रिय जाति को लिया, एक इंद्रिय को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके आगे जो कथन है ना, वो जघन्य भी करता है, अजघन्य भी करता है, इसमें डिफरेंस होगा ना। पंचेन्द्रिय जाति का करेगा तो जघन्य करेगा, और एक इंद्रिय तो सर्व संकलेश वाला तो मैक्सिमम करेगा, वो अनंत गुणा कहेंगे। इसलिए ऐसी प्रकृति ली कि जिनमें एक ही स्टेटमेंट हो सकता है। तो देखो, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, आतप, उद्योत और त्रस का कदाचित बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब कोई एक इंद्रिय जाति भी बांध रहे, क्योंकि देवी तो एक इंद्रिय जाति का बंध कर रहे हैं, तो एक इंद्रिय जाति और स्थावर का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्योंकि एक इंद्रिय जाति का जघन्य तो मध्यम परिणाम में होता है, और ये तो सर्व संकलेश वाला है, यह अनंत गुणा। कारमण शरीर आदि और निर्माण का नियम से बंद करता है। तेजस कर्मन को एक साथ लिया था, अच्छा एक एक को लेना। हाँ एक एक को लेना, तेजस शरीर के साथ कर्मन शरीर आदि का नियम से बंद करता है, ऐसा लेना। वही तो ये सन्निकर्ष तेजस शरीर के साथ लगाना है, तो तेजस के साथ कर्मन नियम से बंधेगा, और नियम से क्या बंधेगा वो तो अगुर लघु बंधेगा, उपघात वगैरह बंधेगा वगैरह वगैरह, उसको जगन्य में नहीं लेना है। परंतु जो कर्मन शरीर वगैरह जो
नहीं, वो जगन्य भी होगा, जगन्य तेजस शरीर का जगन्य करता है तभी कर्मन शरीर।
लिस्ट बोलो आदि में क्या
कर्मन शरीर अगुर लघु प्रशस्त
निर्माण तो बता दिया उन्होंने, वही मैं कह रही थी कि उपघात को यहाँ नहीं लेना, वो अप्रशस्त ये मेरे कहने के। देखो कर्मन शरीर लेना है, प्रशस्त वर्ण चतुष्क लेना है, वो जगन्य भी बनता है ऐसा लेंगे ना आगे चलकर। अगुर लघु उपघात और सॉरी उपघात नहीं, मुझे परघात और उच्छ्वास लेना है, अगुर लघु त्रिक कहना। क्योंकि अगुर लघु त्रिक क्यों, देवी बांध रहे तो पर्याप्त का ही बंद करे तो परघात विश्वास बंधेगी उनके, और मनुष्य तीरंज नर गति के साथ जगन्य बांध रहे। फिर से अभी हमने क्या देखा, तेजस कर्मण का जगन्य कौन कर रहा है, सर्वसंकलेश्वर, तो देवी एक ही नहीं जाती बांध रहे तो पर्याप्त ही बनते हैं।
तो
हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो वो प्रघात उच्छ्वास को लेना, और मनुष्य तीर्यंच नरगति के साथ बंधेगी उनके भी प्रघात उच्छ्वास तो बंधेगा ही बंधेगा, इसलिए उन दोनों को लेना ये लिस्ट में, यानी अगुर लघु के त्रिक को ले लेना। नियम में वो तो एक इंद्रिय के साथ सार बनती है, वो चतुष्क को नहीं लेना नियम में, नियम में बादर पर्याप्त और प्रत्येक को लेना, त्रस और स्थावर को ऑप्शन में रखना।
हाँ,
बादर पर्याप्त और प्रत्येक को ले सकते हैं, और त्रस को तो ऊपर और कदाचित में रखा था, देखो ऊपर से सेकंड लाइन में कदाचित में रखा था। तो कर्मन शरीर आदि में हमने तो कर्मन शरीर लिया, प्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुर लघु के तीन लिए, बादर पर्याप्त प्रत्येक लेना, निर्माण तो कह ही दिया है प्रत्येक, बादर पर्याप्त और प्रत्येक। ये सभी कैसे प्रशस्त प्रकृति, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार तेजस शरीर आदि का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। तेजस शरीर का ही तो सन्निकर्ष बताया ना, यानी वो सभी जो तेजस सहित जो सभी है आगे की लिस्ट, उनका भी आपस में ऐसा ही सन्निकर्ष होगा। किंतु इनमें से किसी एक के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का नियम से बंद करता है, जो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। तेजस कर्मन अगुर लघु वगैरह के लिए लगेगा ये, प्रशस्त वर्ण चतुष्क लेना, उसमें निर्माण लेना। अकारक द्विक अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात और तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओग के समान है। आहारक द्विक का जगन्य हमने कहाँ देखा था? छठे में आहारक का बंद सातवें वाला, सातवें और आठवें में बनती है। आहार कायुग की बात नहीं हो रही, आहार द्विक के बंद करने वाले की बात है। जहाँ आहारक का बंद हो रहा है वहाँ उसका जगन्य बंद हो रहा है, तो देवगति का बंद कैसे होता होगा?
आहारक
का जगन्य है वहाँ, देवगति का बंद कितना है? जगन्य का अजगन्य, अजगन्य तो कितना है? अनंत। क्यों देवगति का जगन्य कौन करेगा?
मनुष्य
करेगा। कौन सा मनुष्य करेगा? चौथे के पांचवे अमिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम में जगन्य करेगा, है ना? उसकी अपेक्षा ये सात्विक गुण स्थान वाला तो अनंत गुण अधिक करेगा, बरोबर है? तो देवगति के बांध रहा है ये, तो देवगति के साथ बंधने वाली सभी शुभ प्रकृतियां कैसी बंधेगी उसकी? अनंत गुण। और आहार द्विक के साथ बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियां है उपघात अप्रशस्त वर्ण चतुष वो भी अनंत गुना बंधेगी, क्योंकि अभी सातवें से छठे में आने के सन्मुख वाला है और उसका जगन्य तो ऊपर आठवें में बंधेगा। हल में इतनी बात स्त्री वेदी की बात है, मार्गणा की कहा है? आहार द्विक मार्गणा नहीं है, योग है वो योग मार्गणा है, आहारक द्विक मार्गणा ही नहीं है। और आहारक कहना है तो आहारक का आयोग अलग है और आहारक अनाहारक वो बात अलग है। ये प्रकृतियों के नाम है। अप्रशस्त वर्ण और उपघात का जगन मैंने आहार द्विक का जगन्य बंद कर रहा है। कौन करते हैं? सातवें गुण स्थान वाले जब छठे के सन्मुख है वहाँ नियम से क्या बंधेगी? देवगति बंधेगी। और वहाँ बाकी सब उसके साथ वैकिरेक वैकिरेक अंगोपांग सब ले लेना, वैकिरेक वैकिरेक अंगोपांग भी अनंत गुण अधिक बंधेगी, क्योंकि उसका जगन्य तो नर गति के साथ मिथ्या दृष्टि के होता है ना। अभी सब लगा लेना प्रकृतियां, देवगति वाली जो प्रकृतियां है आहार द्विक सहित देवगति बांध रहा है, तो उसके साथ आहार द्विक के साथ तीर्थंकर प्रकृति कदाचित बंधेगी। वो कैसी बंधेगी? वो भी अनंत गुना बंधेगी। अब अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात का जगन्य कहाँ पर होगा? आठवें गुणस्थान में जहाँ बंध विच्युति होती है वहां जगन्य है, तो उसका जगन्य बंध करने वाला जीव अब ये कौन सी गति बांध रहा है? देवगति। तो जैसे आहार द्विक में घटित किया वैसे वहां पर भी होगा। हमें केवल नाम कर्मों के साथ लगाने अन्य की बात नहीं है, यानी यहाँ बंधने वाली जो प्रशस्त प्रकृतियां है वो अपने जगन्य से अनंत गुण अधिक बंध रही है। केवल वो एक दूसरे के साथ वो जगन्य का वही बंध कर अप्रशस्त वर्ण चतुष्क के साथ उपघात जगन्य भी बन सकता है, इतना ही ले सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओग के समान है। अब मन जो आप बताएंगे स्त्रीवेदी जी है तीर्थंकर प्रकृति का जगन्य बंद करें, पहले आप स्वामी बताओ फिर उसके साथ बंधने वाली प्रकृतियां भी बताओ। मनुष्य गति का जी, हाँ, कि स्त्रीवेदी में तीर्थंकर प्रकृति का बंद मात्र मनुष्य ही करता है, देवी क्यों नहीं करती?
आरम्भ नहीं कर सकते ना, कोई मनुष्य गति
बंध शुरू आरंभ करता है। और स्त्रियों में तो जन्म से तो मिथ्या दृष्टि है, तो वहाँ तो उनमें तो बंध है ही, वो बात सही है। तभी तिरंजों के तो बनती नहीं है, तो मनुष्य यानी वो स्त्री वेद वाला जो मनुष्य है सम्य दृष्टि है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, तो जगन्य कब होगा? चौथे में ही है। बोले मिथ्या तो नहीं जाने वाला, कब जाएगा? जाने वाला अभी गया नहीं है, जाने के सम्मुख है। कब जा, कोई जीव मिथ्यात्व में क्यों जाता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और मिथ्यात्व में जावे। हाँ, जिसने नरकायु बांधी है और अभी वो नरक में दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला है, तो जाने के एक अंतर पहले वो मिथ्यात्व में चला जाता, तभी उसका तीर्थंकर प्रकृति का मिनिमम बंध है, सर्वसंकलेश है वहां पर, तो उसका बंध कर रहा है। अब वो गति कौन सी बांध रहा है? समय दृष्टि नरक गति कैसे बांधेगा?
अच्छा, अगर बोले नहीं ऐसी गलतियाँ आती है ना तो
सुधर जाएंगे। अरे बड़े बड़े महान विद्वान भी ऐसी गलती करते हैं।
आप बड़े महान।
किसी ने ऐसा बताया था, देखो कैसी विचित्रता, नरक गति और तीर्थंकर प्रकृति एक साथ बन रही है। वो मिथ्या समय दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, समय दृष्टि है, मनुष्य चौथे गुणस्थान वाला है, देवगति का बंद कर रहा है। तो देवगति का भी कैसा बंद कर रहा होगा? अनंत गुणा अधिक क्यों कहा? क्योंकि वो फिर भी समय दृष्टि है, समय दृष्टि की अपेक्षा भले वो जघन्य होगा, परंतु वो तो मिथ्या दृष्टि भी मध्यम परिणामों में जघन्य बंद करता है, श्रीवेदी है ना, उसकी अपेक्षा अनंत गुणा अधिक होगा। बाकी भी उसके साथ बनने वाली जो शुभ प्रकृतियां हैं वो भी अनंत गुणा अधिक बन जाएगी। ख्याल में कैसे डिराइव करना कि पहले स्वामित्व नक्की करेंगे तो बाकी ठीक होगा। तीर्थंकर प्रकृति जघन्य बन रही है, वहाँ देवगति जो बन रही है उसके साथ वो समय दृष्टि बांध रहा है, तो उसका जो अनुभव बन रहा है, कोई स्त्रीवेदी मिथ्या दृष्टि जो देवगति बांध रहा है जघन्य मध्यम परिणाम में, उसकी अपेक्षा से ये अनंत गुणा अधिक बन रहा है। न देवगति बांधने वाला मिथ्या दृष्टि जघन्य बांध रहा है, ये कहना, ये मैं कह रहा हूँ, देवगति के बारे में कथन हो रहा है, यानी तीर्थंकर प्रकृति के जघन्य के साथ जब देवगति बन रही है, भले वो समय दृष्टि की अपेक्षा संक्लेश है, परंतु कोई मिथ्या दृष्टि स्त्रीवेदी देवगति बांध रहा होगा मध्यम परिणामों में जघन्य, उस देवगति के जघन्य की अपेक्षा यहां वाला जो अनुभव बंध है वो अनंत गुणा देख, इसलिए ओक के समान कह दिया। ओक के ओग में देख लो जरा, यानी कंफर्म कर लो। ओग में पेज नंबर 27 से शुरू हुआ था ना, कहाँ से शुरू हुआ था? 38 तो नरक गति की बात होगी, 38 तक आ गई। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला है। देखो पंचेंद्रिय जाति वैक्रिय देवगति, पंचेंद्रिय जाति वैक्रिय शरीर तेज शरीर कार्मण शरीर, अब वो देव के साथ जो बनने वाले सभी प्रशस्त प्रकृति सब ले ले लो, फिर भी अशुभ कौन सी लेना है? अस्थिर, अशुभ और अयशस्व स्थिति, ये तीन ही अप्रशस्त लेना है। अप्रशस्त वर्ण चतुष भी है और वो तो चतुष्क भी ले ली ना, उपघात भी ले लेंगे, ये कैसे अनंत गुणा अधिक बन जाएगी, ये बात है। आहार विग भी देख लो, 32 आहार, नीचे से तीसरे आहारक शरीर के जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव, ये भी देवगति वगैरह वगैरह बांध रहा है। देखो यहाँ पर आने 32 के लास्ट थर्ड लाइन वहां से आना भी 33 पर पहले लाइन के लास्ट में, ये जो नियम से बनने वाली अनंत गुणादिक है। अब यहाँ सिरादि छो के छो लिए, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है मंजू? हाँ, गुणस्थान कौन सा बंधने वाला? आहारक का योग नहीं है ये, आहारक दी का बंध सातवां गुणस्थान वाला है, अभी जो छठे के सम्मुख है। तो वहां स्थिरादि छोड़ लिए, क्यों अस्थिर को क्यों छोड़ा? हाँ वो छठे में हो गई ना, हाँ यही मैं उत्तर चाहती हूँ। इसलिए वहां वो ऑप्शन नहीं है, वो शुभ ही प्रकृति वाली। तीर्थंकर प्रकृति के जगड़ने के साथ हमने अस्थिर लिया था, अशुभ लिया था और अयशस कीर्ति लिया था, यहाँ नहीं लिया है। चल अभी आगे बढ़ेंगे अपने पेज नंबर 62। स्त्री वेदी की मार्गणा समाप्त होती है। पुरुष वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है, शेष भंग ओक के समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यंच गति द्विक की परिवर्तमान प्रकृतियों में परिगणना करनी चाहिए। डिफरेंस तीर्यंश गति के लिए तो श्रीवेदी में भी था वैसा। सात कर्मों का भंग श्री वेदी जीवन के समान है और शेष भंग ओग के समान है। इतनी विशेषता की तिर्यंच गति द्विक के परिवर्तमान प्रकृति में परिगणना करनी चाहिए। यहाँ स्त्रीवेदी के समान बाकी बातें इसलिए नहीं लिए उन्होंने, देखो हमने स्त्रीवेदियों में क्या देखा था, पंचेंद्रिय जाति का जगन्य बंध कर रहा था। कौन जीव कर रहा था? वो नरक गति के साथ मनुष्य तीरंज कर रहा है ना, और वो देवी थे, वो तो पंचेंद्रिय जाति का जगन्य बंध मध्यम परिणाम में कर रहे थे। अब पुरुष वेदी लिया है, पुरुष वेदी तो ऊपर के देव भी आ गए, तो उसमें से तो पंचेंद्रिय जाति का जगन तो अति संक्लेश में करेंगे वे, तो वो तीन इंच गति भी बांधेंगे। देव है शरीर तीव्र संक्लेश वाले, तीन इंच गति बांधेंगे। मनुष्य तीन इंच पुरुष वेद वाले नर गति बांधेंगे, तो उसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। इसलिए वहां तीन इंच स्त्री वेदी के समान नहीं कहा उन्होंने, ओह के समान। बराबर तिरंज गति के कौन सवाल? पंचेंद्रिय जाति का जगन्य की बात चल
नहीं, नहीं। हाँ।
वो तो श्रीवेदी में भी घटित होता है, वो तो हमने करके देखा था। کیا کیا فرق پڑے گا سات کرم میں؟
دنیا میں
کیا ڈفرنس کیا
ہوگا؟ وہاں پہ چار سدگن کا بھی
پورش لے اور آپ کو گھوٹالا کر رہے ویدن کے ادے اور بندھ میں. بندھ تو دونوں ہی سمان کرتے پروش ویدی ہو یا استری ویدی ہو, ڈفرنس کیا ہو مجھے پھر سمجھاؤ. پروش ویدی
میں پروش وید کا جگہ ملے وہاں پہ چار سنگن کا بھی جگہ ملے اسی طرح
اور شری ویدی میں
پروش وید کا جگہ ہے وہاں پہ چار سنگن کا بھی جگہ
وہی تو آپ دونوں میں گھٹت کر رہے ہیں.
تو
یہ سمان کہاں کا پتا ہے شری ویدی کے سمان بتایا شیش نہیں سات کرموں میں موہنی لے لیا انہوں نے موہنی کا بھنگ شری وید کے سمان تو ڈفرنس کیا ہوگا؟ اتنی وشیشتا آگے بتائیے. ٹھیک ہے نا, پروش وید کا بندھن نہیں ہے سمجھو, یعنی یہاں تین سنجولن پروش وید کا نیم سے بند کرتا ہے سر. پروش وید کا ادے اور بند نہیں ایسا ہے, پروش وید کا ادے ہے وہاں پروش وید کا بند نہیں ہے.
ہاں
برابر, اور پروش وید میں کیا ہوگا؟ کیوں نہیں باندھے گا؟ بند بند ہوتا تو ادے کے سمے بند ہوتے کہ ادے ہوتے ہوئے بند رک جاتا؟ پروش وید کے انتیم سمے میں ادے کے وہ استری ویدیوں کے لیے جگنیہ تھا. میں سمجھاتی ہوں پہلی مارگنا استری ویدیوں کی تھی, یعنی استری اپنے وہ کا ابھی میں اس کو ایکسپلین کروں گی. جو استری وید کے ادے سے ہی چل رہا ہے اس کا استری وید کا ادے یہاں تک ہے, پروش ویدی کا پروش وید کا ادے یہاں تک ہے. تو جہاں تک استری وید کا ادے ہے وہاں تک اس کا وید بند رہا ہے, کون سا؟ پروش وید, اور باقی کرودمان مایا لوگ بھی بند رہے. تو اس کے لیے پروش وید کا جگنیہ کہاں ہے؟ تو اسی پوائنٹ پر. اور اس کے لیے کیونکہ استری وید اس کے بعد اس کو ہم استری ویدی نہیں کہیں گے, اپگت ویدی کہیں گے, تو اس کے لیے کرودھ کا جگنیہ کہاں ہے؟ پر اس پوائنٹ پر ہے. پروش ویدی جیو کے پروش وید کا اور کرودھادی کا یہاں پر جگنیہ ہے. تو ان کا ایسا کہنا تھا کہ یہاں اس کا جگنیہ ہوا, یہاں کا ایسا جگنیہ ہوا, پرنتو یہ استری ویدی کے لیے جگنیہ اور یہ پروش ویدی کے لیے جگنیہ ہے. یہ ان کا آپس میں کون سا کم زیادہ ہے وہ نہیں بات ہے, یہاں پر مارگنا پروش وید کی ہے, یہی اس کا جگنیہ کا پوائنٹ ہے. تو جہاں پروش وید کا جگنیہ بن رہا ہے وہاں چار بن رہے, اور جہاں کرودھ کا جگنیہ وہاں تین سنجولن بن رہے. اور وہ کیسے بن رہے؟ وہ بھی جگنیہ بن رہے کیونکہ اس کے اوپر پروش وید ہی نہیں ہے. تو بعد میں ان کا بند رکتا ہے اس کی اپیکشا یہاں زیادہ ہے, ایسا نہیں کہنا اس کو. انہوں نے اوک کی اپیکشا لگائی کہ یہاں کہاں جگنیہ لگایا, وہ تو جگنیہ تو بعد میں ہوتا ہے اس کا. वो नहीं लगानी जिस मार्गणा में उसका कल उन्होंने नहीं बताया था ये जगन क्यों करे उसका अनंत गुणा कहना था अभी मौन छूट गया उनका समय वाक्य कहाँ तक आया था वो वाक्य पूरा करेंगे पुरुष वेदी की बात हाँ ये तो हो गई नपुंसक वेदी की बात कल देखेंगे कल जरा नया मिस्टेक करने की जावान के ज्ञान ते सुने लो कारो सोवाणी मस्तकनम सदा देव